सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंता नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं सौवसाहूनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्सभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सर्वसिद्धे त्वमचलमनोवमं गतिं पते वोच्चामि समयपावलो मृणमो सुदकेवलीमणिदम्। यह कुंदकुंदाचार्य भगवान का समय सार जो है, उस समय सार की गाथा 44 अपनी हो गई थी, उसके ऊपर का जो कलश था वह 34 नंबर का कलश हम देख रहे हैं। इस कलश में आचार्य ये समझा रहे हैं, तू जो ये व्यर्थ का जो कोलाहल कर रहा है उससे अभी तू रुक जा, विरम पाम, यानी अभी इससे तू बस हो जाए, ऐसा कह रहे हैं। और क्योंकि उस कोलाहल से तेरा कोई सिद्धि साध्य होने वाली नहीं है, और आगे यह भी बताते हैं कि अगर तू स्वयं को मैं चैतन्य मात्र आत्मा हूँ ऐसा अभ्यास रखता है तो 6 महीने के अंदर तुझे आत्मानुभूति हुए बिना रहेगी नहीं। अब इसी बात को पुष्टि देने के लिए श्रीमद् जी ने जो बात बताई है वह हमारे यहाँ पृष्ठ क्रमांक 33 और आपके पास 267 उसमें है। श्रीमद् राजचंद्रे कहीं उछे के, अभी श्रीमद् जी की बात बता रहे हैं वहां पर, जो इच्छो परमार्थ तो करो सत्य पुरुषार्थ। क्या कहते हैं कि अगर तुम्हें परमार्थ, जो परमार्थ की इच्छा यानी क्या, अपने परम अर्थ ऐसा जो अपना स्वभाव है, अपना द्रव्य है, उसको पाने की अगर तुम्हें इच्छा होगी तो पुरुषार्थ, वो भी कैसा, सत्य पुरुषार्थ करो। क्यों? कि यह जीव अपना पुरुषार्थ पर पदार्थों में लगाने को ही चाहता है और यह भूल जाता है कि यह जो वीर्य गुण की जो पर्याय है वह मेरे में ही कार्यकारी होने वाली है, अन्य पदार्थ में उसका कुछ नहीं होने वाला है। अभी समयसार की भाषा में देखना हो तो स्वज्ञेय और परज्ञेय इन दोनों में तफावत है, अत्यंत अभाव है। अब इसलिए कह रहे हैं करो सत्य पुरुषार्थ, भवस्थिति आदि नाम लई छेदो नहीं आत्मार्थ। यानी अभी मेरी जैसी भव की स्थिति होने वाली है, जैसे केवली भगवान ने देखा हुआ है वैसा होगा, अभी मेरी भव स्थिति खत्म होने वाली है तो मेरे को तो सम्यक दर्शन होगा ही, मैं मोक्ष जाऊंगा ही, ऐसा बोलकर तुम आत्मार्थ को उसको छेद मत देना, यानी उसका उसको नष्ट मत करना, यानी उसको फजूल मत गंवाना। देखो अभी क्या कहते हैं, देखो परम आनंदनो परमानंदनो नाथ परम पदार्थ भगवान आत्मानी उपलब्धिनी भावना हो तो, ये पहली कंडीशन क्या है, अगर तुझे भावना हो तो सत्य पुरुषार्थ एटले स्वभाव सन्मुखतानो पुरुषार्थ कर। भवस्थिति हशे तेम थशे एटले काल लब्धि हशे तेम थशे एवी मिथ्या अटक એટલે પકડ છોડી દે, કાલ લબ્ધી હશે ત્યારે થશે એવો દુરાગ્રહ આત્માના હિતને છેદનારો છે, માટે ભવસ્થિતિ આદિના બહાના છોડીને तू पुरुषार्थ कर। ये लोग बहुत बहुत जो क्रमबद्ध पर्याय को विरोध करते हैं उनकी भी यही मान्यता है कि भाई देखो केवली भगवान ने देखा है ना कि हमें कब आत्मानुभूति होनी है, तो जब होनी है सो होगी, तुम काय को व्यर्थ चिल्लाते हो कि क्रमबद्ध है क्रमबद्ध है क्रमबद्ध। अब हम ही मानते क्रमबद्ध है तो हमें अभी थोड़ी करना है, जब देखा होगा जब होगा। तो ये दूसरे पर टालते, ये क्या कह रहे हैं कि भवस्थिति जितली हसे ये ना, जब अभी मेरी भवस्थिति बहुत छोड़ी है तो मेरा आत्महित हो जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। यहां तो कहते कि सत्य पुरुषार्थ करना चाहिए, ख्याल में। अब सत्य पुरुषार्थ का अर्थ क्या है कि आत्मा का अनुभव करना चाहिए, ख्याल में। ये तो बिल्कुल बात ऐसी है साहब, ये क्रमबद्ध पर्याय जो है वो यही बताते हैं कि समझ लो कि अभी हम अमेरिका में वो लिफ्ट में बैठे हैं और हमें 100वें नंबर के फ्लोर पे जाना है, तो 100वें नंबर के फ्लोर में लिफ्ट में बैठेंगे तो वो 99वें वाला आएगा बाद में ही 100 नंबर आएगा, और 99वें भी जब आएगा कि उसके पहले 98 नंबर वाला आएगा, ऐसा क्रम से एक से लेके दो को जाना है तो एक को जाना ही पड़ेगा, एक आएगा ही बीच में। वैसे वह भी जो पर्याय है, वह पर्याय जो समझो आपके सम्यक दर्शन की पर्याय तुम्हें, तो उसके पहले करण लब्धि के आखिरी समय की पर्याय होगी होगी, तो वैसा नीचे नीचे आ जाओ। तो ये मेरे को मुझे स्वभाव का मतलब विशुद्धि लब्धि आएगी ना उसकी, कि मुझे मुझे जानना है, वो भी पर्याय आएगी। अब करण लब्धि के पहले की प्राग्ञ लब्धि आएगी, प्राग्ञ के पहले देशना आएगी, देशना के पहले विशुद्धि आएगी, ये सारा क्रम से होगा तभी तो आगे वाली बात होगी। वो ये भूल जाता, वो तो जब होना है सो होगा, ऐसा ऐसा होगा तो होना, उसने तूने देखा ही नहीं है कि तूने समझा ही नहीं है कि केवली ने क्या जाना है। तो यहां पर भी वही बताते हैं कि तुझे तो अपने आत्महित करना है, तो अन्य किसी बात के आड़ में जाकर अरे भवस्थिति हसे तेम थसे ऐसा करके तुझे निठल्ला नहीं रहना चाहिए, आत्मा को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उसी को पुरुषार्थ कह रहे हैं ना, क्या कह रहे, देखो देखो, तू न्यायकनी सन्मुख थई पुरुषार्थ कर। तो न्यायकनी सन्मुख यानी न्यायक कैसा है, क्या है, उसका स्वभाव कैसा है, वह तुझे जानना पड़ेगा, और जभी तू उसके बारे में उसमें स्थिर होने की कोशिश करेगा। न्यायक ज्ञान मा होता तने पाचे समवाय नु वास्तविक ज्ञान थशे। अब यहाँ ये पांच समवाय जो है वो कौन कौन से है मालूम है प्रभाव, इन पांच समवाय के नाम जानती हैं आप? स्वभाव, नियति यानी आप कहो भवितव्यता, ठीक है हाँ। अच्छा कोई बात नहीं, आप बता रहे जितना याद है बोलो। हाँ 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 और निमित्त, हाँ तो ये पांचों देखो, हाँ जी अलग अलग है, भवितव्यता अलग है और काल लब्धि अलग है।
नियति और भवितव्यता, होनहार कहो या भवितव्य कहो एक ही, भवितव्य होने योग्य जो पर्याय की तरफ से बात है, काल लब्धि यानी कब होगा वो बताने वाला।
हाँ बताइए बताइए। नियति भवितव्य,
नियति यानी होनहार,
होनहार
होनहार कहो भवितव्य कहो या नियति कहो, जो होने वाला है वही होगा। देखो पांचे ही समवाय एक साथ होते ही है, जब जब कार्य होता है तो जब जब होता है ने प्रति समय होता है। हाँ तो तब ये पांचों ही समवाय ने, समवाय ने ग्रुप, पांच कारणों का ग्रुप है तो उसको पांच समवाय कह देते हैं। पांचों का मिलकर समवाय हुआ, वहां संबंध इकट्ठे आ गए ना, इकट्ठे आना इसको समवाय कहते हैं। ये तो पांचों ही कारण इकट्ठे होते हैं वहां जब कार्य होता है, यानी प्रति समय प्रत्येक पर्याय होती है तो उसमें प्रत्येक पर्याय में पांच समवाय होते ही है, कार्य हुआ ना पर्याय ने, तो वहां ये पांचों ही कारण होते ही है। तो स्वभाव ने जिस द्रव्य की वो पर्याय होनी है उसी द्रव्य में वो ऐसा स्वभाव पड़ा है, त्रिकाली उपादान बताता है स्वभाव। नहीं नहीं बताती हूँ, पहले चार तो उपादान में आते, हाँ, स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि और होनहार तो उपादान है, और निमित्त तो एक ही है, एक कारण वो निमित्त है,
वो भी परद्रव्य में होगा।
भाग्य में कभी कभी वो कर्म की बात आती है, लोगों को ऐसा लगती है दैव या वो, हाँ, उस अपेक्षा से अगर नियति की अपेक्षा लेते तो हो सकता है, उसको ले सकते हैं, और कभी कभी वो दैव ने कर्म के उदय को भी वो दैव के दैव वशात ऐसे कहते हैं, तो ऐसे उसमें गफलत नहीं हो, उतना ध्यान रखकर उसका यूज कर सकते हैं। तो पांच समवाय में तो स्वभाव, तो कौन से द्रव्य की वो पर्याय है, कौन से द्रव्य में वो कार्य है, वो तो स्वभाव है ना उस द्रव्य का, तो उसमें वैसे ही होगा। जैसे जानना 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 जीव द्रव्य का स्वभाव है, तो उसी जीव द्रव्य में ये जानने वाली पर्याय होगी, पुद्गल में तो होगी ही नहीं, ये स्वभाव बताता है। अब उसमें पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ में वो अनंत पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय पूर्वक ये होगी, ऐसा ऐसा भी पुरुषार्थ का अर्थ लगा सकते हैं, उस अपेक्षा से भी लेते उसको। काल्लभ्य ने जो पर्याय होनी है वही होगी, वो योग्यता ना उस समय की पर्याय ही होगी, अन्य नहीं होगी, तो वो उसमें आती है। और काल्लभ्य ने उसका क्रम भी निश्चित है, समय ने वो काल द्रव्य का समय नहीं लेना, उसी द्रव्य में
हाँ,
कौन सी पर्याय उस यानी उस समय कौन सी पर्याय होगी वो उस समय लेना उसकी, तो उसका क्रम या उसका निश्चित प्लेस, उसकी अपना जन्म क्षण भी है, उसको काल लब्धि कहेंगे। उस द्रव्य का या पर्याय का वो स्वकाल है, ये परकाल की बात नहीं है। हाँ, तो ये तो चार उपादान हो गए, स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि और होनहार, ये सभी उपादान में हो गए, वो एक उसी द्रव्य में होते हैं ये, और निमित्त तो पर द्रव्य है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है ना, होनहार और काल लब्धि कछु वस्तु नहीं है, यानी जो पर्याय होगी उसी को होनहार कहेंगे और जिस समय होगी उसको काल लब्धि कहेंगे। तो स्वभाव तो है ही द्रव्य में पड़ा हुआ, तो अभी क्या करना, उपदेश किसका देंगे, काल लब्धि का देंगे क्या होनहार का देंगे? उपदेश तो पुरुषार्थ का होगा कि ऐसा करो,
क्योंकि स्वभाव जो है उसमें क्या करना है,
ना स्वभाव में तब्दीली करना है, ना काल लब्धि बदलनी है, ना ही होनहार बदलना है, वो बदल ही नहीं सकता है, इनको स्वीकार करना यही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ कोई अन्य चीज नहीं है, पांचों समवायों से कार्य होता है, इसका जो स्वीकार करेंगे तो ये पुरुषार्थ होगा कि नहीं? पांच समवायों को स्वीकार करते हैं तो क्रमबद्ध भी निश्चित हो जाता है, क्योंकि ये कारण निश्चित है तो कार्य भी निश्चित है, पर्याय निश्चित है, क्यों निश्चित है, उसके कारण भी सुनिश्चित है, उसी समय में वो होंगे, ये सब कुछ निश्चित है और सब कुछ सहज है, इसका स्वीकार हो जाता है, उसका निर्णय होता है, वही पुरुषार्थ है। वही क्रमबद्ध का निर्णय कहो, वही निमित्त उपादान का निमित्त निर्णय कहो, और वही ये पांच समवाय का निर्णय को, एक ही बात है। ये सिद्धांत अपने ख्याल में आते हैं तो उसकी सहजता ख्याल में आती है, तो कार्य स्व का भी और पर का भी सहज होने योग्य होता है, और वो तो द्रव्य में पड़ी है शक्ति। कल आया था ना वो टिकने का और परिणमने का, प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है। तो हमें ऐसा लगता है ना, आत्मा को जानना है, आत्मा में स्व स्थापित करना है, वो तो आत्मा के गुण है और वो आत्मा में वैसी पूरी कैपेसिटी उसमें पड़ी है, हमने भ्रांति खड़ी की है, और ये भ्रांति के कारण हम और ज्यादा आकुलित हो जाते हैं, ख्याल है? जब ऐसा निर्णय होता है तो उस सहजता का पता चलेगा, तो भी कौन सी पर्याय कहाँ ले जानी है, उपयोग तो अंदर खींचना कि नहीं खींचना, बोलो प्रतिभा में खींचना है, हाँ किधर लगाना है? ये सहज है, हाँ सहज है। हाँ तो अभी ना ही परका करना है ना अभी अकुलता समाप्त हुई, कुछ करना नहीं है। आत्मा में प्रति समय ये उपयोग रूप यानी उसका कार्य तो हो ही रहा है। वो तो नियम सार में भी बहुत बातें आई थी कि चारित्र जो है ना आत्मा में स्थिरता, ये तो आत्मा का गुण है कहते, वो सहज है, सब कुछ सहज वहां बताया था। अभी उसके बहुत दिन हो गए ना तो सहजता का पता भी छूट गया।
सहज निकल गया। नहीं बात ऐसी है कि हम बहुत अंशी ऐसा ही मानते हैं कि मुझे मेरा ध्यान करना है या मुझे मेरे में एकाग्र होना है, ये तो कथन पद्धति है। वास्तव में मैं जुदा हूँ और ध्यान करने वाला कोई जुदा है, ऐसी बात है नहीं। लेकिन समझाए क्या कि जो उपयोग पर में लग रहा है वो स्व में लगा दो। दूसरी भाषा में कहना है तो मैं न्यायक हूँ ये तो बात नक्की है, ज्ञानात्मक हूँ ये भी बात नक्की है, ज्ञान में हूँ ये भी बात नक्की है। तो भाई तेरा काम क्या है? जानना। काम है तो जानना है तो तू जानने वाले को जान, यानी गुजराती में बोलना तो जाननार नहीं जान, बस इतना ही करना है। आने ना, अच्छा है, कोई बात नहीं भाई। वो पहले विकल्प तो आएंगे ही कि मैं शुद्ध हूँ मैं बुद्ध हूँ, अच्छा है, उसमें क्या खराबी है? पर वो अपने को आत्मानुभूति नहीं हो रही है। देखो जो निर्विकल्प होगा तो पहले विकल्प होंगे, जब ही तो निर्विकल्प होगा कि नहीं? और ये किसके बारे में विकल्प चल रहे हैं? रस्ते के बारे में, पर के बारे में या स्व के बारे में? तो उसके पहले वाली ये भूमिका होगी ही होगी। ऐसा स्विच का बटन नहीं कि बटन दाबे और वहाँ अंधकार से प्रकाश हो गया। ये तो पहले ऐसी भूमिका में, पहले तो हमें ऐसा ही, अभी पहले हम अपने बच्चों के बारे में सोचते थे, अपने माँ बाप के बारे में सोचते थे, अपने परिवार के बारे में सोचते थे, अभी हम किसके बारे में सोच रहे हैं? स्व के बारे में सोच रहे हैं। कुछ तो भी फर्क है कि नहीं? हमको तो ऐसा लगता है कि साबु लगाओ और गोरा हो जाओ, ऐसा यहाँ आत्मा का अनुभव करे और आत्मानुभूति हो जाए। होगी, कई जीवों के ऐसी हुई है लेकिन सबको नहीं। यहाँ तो भाई पहले ये भूमिका में ऐसा आएगा ही, विकल्पात्मक भूमिका रहेगी ही, उस विकल्प में से ही निर्विकल्पता हो जाएगी। वो कैसे होगी? बस वो जिसके उसके ऊपर आधार है।
ये निर्विकल्प यानी ज्ञान रहित की बात नहीं है। देखिए अभी ठीक है, ये तो चल रहा है, अपने अंदर स्वाध्याय चल रहा है, कोई बात नहीं है। देखो यहाँ कोई ऐसी अलग नहीं है। अभी ये पेन देख रहे हो, किसका ज्ञान चल रहा है? पेन का ज्ञान किसका हो रहा है? पेन का हो रहा है। तो जो पेन वाली जो ज्ञान पर्याय है, अभी आईने में ये दर्पण के सामने रखा, दर्पण में क्या दिख रहा है? पेन दिख रहा है। वो दर्पण है कि पेन है? वो दर्पण है ना। वैसे हमें क्या लगता है, ये पेन का ज्ञान है? अरे ये ज्ञान, ये जो चल रहा है वो मेरी अवस्था है, पेन की अवस्था पेन में है। ये ज्ञान को, पेन को जानने रूप अवस्था मेरी है। ये अभी स्वज्ञेय की बात आई थी ना, अभी प्रवचन सार में बहुत पढ़ा हमने, निमित्त के अनुसार जैसा निमित्त है वैसा भी यहाँ ज्ञान की पर्याय हो रही, वो मेरी अवस्था है। जो अवस्था
ऐसा घबराना मत आप, हम अन्य किसी बात में जो अटक रहे थे पहले, उससे हटकर कम से कम अपने बारे में सोच रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल
जरूर होगा, क्योंकि ये क्या है, जैसे हम यहाँ से पुणे जा रहे तो रास्ते में लोनावाला वो करना जो कुछ स्टेशन से वो लगेंगे, तो वी हमें पता है कि वी आर ऑन राइट ट्रैक, कहीं हम अहमदाबाद की गाड़ी में नहीं बैठे हैं, क्योंकि वहाँ के स्टेशन अलग है बीच में रास्ते वाले। निर्णय कैसे होता है? हाँ
तत्व विचार तो हो गए ऐसे सब समय साथ के विचार में वो है कोई भी सोच रहे तो ये सब विचार चल कि हमें निर्णय पे आने आ रहे कि मैं शुद्धात्मा हूँ ये मैं ऐसे पे आना है
निर्णय कब हुआ कहेंगे जिस समय आत्मानुभूति होगी वो निर्णय का समय है। नहीं ये बात सही है। हाँ नहीं नहीं प्रश्न टालने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ यही बात है। तब तक तो विचार चलते रहेंगे।
देखो देखो अभी क्या हो गया है हमें सिद्धांत का पता तो निश्चित रूप से लगा है कि ऐसे ऐसे है। अभी हम आपने मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा कहा लेकिन ये जैसी हमारी पॉजिटिव साइड है तो ये तो ज्ञान में तो निश्चित रूप से निर्णय तो हुआ है ज्ञान में श्रद्धा में नहीं हुआ है। बस वो श्रद्धा में होने की खोटी है। अरे अरे फिर
नहीं, वैसे नहीं।, नहीं सही बात टाइम है तो होगा ये तो अपने सिद्धांत है ये।
हाँ नहीं लेकिन
नहीं होगा ये सभी जगह अप्लाई करते हो क्या? खाली में भोजन पिरोसने में देरी होगी तो ये विचार आता है क्या? खाली आत्मानुभूति के बारे में ही आता है ये देखना है। ये जो अपने सिद्धांत है ना वो 24 घंटे अपने डेली रूटीन में हमारे तभी अपने याद आते हैं कि नहीं आते ये देखना है।
देखो बहुत लोग बोलते हैं ना आप लोग खाली ज्ञान 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 करते हैं आचरण में कुछ लाते नहीं आचरण में कुछ लाते नहीं ये तो कुछ उपवास गया ये खाना छोड़ दिया इस दिन नहीं खाएंगे इस दिन खाएंगे एकटाना करेंगे वो कुछ आचरण समझते हैं। भाई हम ये तत्व की बात सुनकर अभी मान लीजिए आप घर में आपके छोटा बालक आ गया है और आपने उधर कोई ऐसा चीज रखी है चश्मा रखा है और चश्मा तोड़ डाले यार ग्लास तोड़ डाले तो हमें जो पहले गुस्सा आता था तो अभी तो वो तो नहीं आएगा क्या अरे इसकी ऐसी परिणति होनी थी ये अभी आपके आचरण में आ गया ये किसको आप बताने जाएंगे? और लोगों को तो बाहर का दिखावा है उसमें ही काफी सारा इंटरेस्ट है। अब एक ने अनेक बातें हैं कि
अभी क्रोध होते होते नहीं जब जब जिस समय क्रोध आ रहा है उस समय भी ऐसे अरे ये तो मेरे अपनी कमजोरी से आ रहे इस तरह से वो तत्वों का विचार चलेगा पूरा दिन भर।
वो तो सहज होगा और होता भी है आपने को पता नहीं लगता है। अभी आप चल रहे नीचे का आपको कोई कीड़ी मुंगी दिख रही तो आप सहज रूप से उसको टाल के जाते हैं तो ये अभी बताना पड़ता है क्या कि आपको ऐसा करो। ये तो हम चाहते हैं कि भाई मेरे से जितनी हो सके कम हिंसा होवे चाहते हैं ना हम चाहने के अनुसार तो कार्य नहीं होता है फिर भी वो होता ही है और फिर हम कहेंगे कि हमने उसको टाला तो ये टाला वाली बात आई तो टाला लग गया मिथ्यात्व का ये थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि फ्लक्चुएटिंग है लेकिन है तो ऐसा ही भाई। ये जो निर्णय की बात आती ना तत्व निर्णय ये श्रद्धा में होगा। अभी तो भाई हम अभी हमारी बात कर लो हम 8-8 10-10 साल से पढ़ते हैं हा? ज्ञान में तो बिल्कुल सही आया है ज्ञान में कोई अभी ऐसी शंका ही नहीं है कि क्या ये मार्ग सच्चा है ऐसा कभी गलती से नहीं लगता है यही मार्ग है ये बिल्कुल नक्की हो गया है। लेकिन अभी भी भेद ज्ञान नहीं हुआ है हम कहेंगे या वैसी यथार्थ स्वपर की श्रद्धा नहीं हुई है ऐसा कहो। ये तो स्लोली एंड स्टेडीली होगा। पहले बीमार पड़ते थे तो हाय हाय हुई हुई होती थी अभी बीमार पड़ने से फिर लगता है कि भाई ये अभी नहीं मतलब ऐसा है कि ऐसा ही होना था समझो या ये शरीर की पर्याय है समझो या ये मैंने कर्म ऐसे खोटे किए तो अभी इसका फल मिल रहा है तो हम उसके तरफ ध्यान नहीं देवे ऐसा समझो जो भी है पर अभी हम उतने आकुलित नहीं हो रहे हैं जितने पूर्व में होते थे। अपने अपने में लगा लेना मैं मेरी बात बोल रहा हूँ यानी इस तरह से ये आचरण में भी आ रहा है श्रद्धा में भी आ रहा है लेकिन जो श्रद्धा की जो बात कहते हैं ना एकदम एक घाव के दो टुकड़े वैसे तो अभी नहीं हुए हैं ये तो स्लोली प्रोसेस है और इससे हमें आकुलित भी नहीं होना चाहिए और एकदम बिल्कुल उसका ये भी नहीं छोड़ देना चाहिए अरे जब भी होगा 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 अभी आराम तो करो ऐसा भी
जहाँ अपनी रुचि है ना जैसे लौकिक में कोई चीज की पाने की या कुछ करने की रुचि है बहुत तीव्र, तो कैसे नहीं होता, मैं कर दिखाऊंगा, ऐसे अंदर से धगस होती है और ऐसे तालावेली लगती है। वैसे जिसको इस बात की रुचि है आत्मा की, तो उसको निरंतर उसके अंदर बेचैनी हो जाएगी कि यानी हर बार उसकी वो उसकी बातें चलेगी उसके सिर में, भले बाह्य में उसके सभी कार्य जैसे रूटीन चलते हैं, फिर भी बैठा है सो या कुछ विचार, ऐसे भी कितना अवसर मिलता है ना, नींद नहीं आती जल्दी, क्या करे, तो बस इसकी धुन लगती है अंदर से,
लगनी चाहिए।
तो जिसकी रुचि है उसके सहज लगती है, उसमें भी सहजता है
कि जो इच्छो परमार्थ, यानी हमें तो ऊपर ऊपर की इच्छा होती है, ऐसे इच्छा जो धगस जिसको बोलते हैं वैसे नहीं हो रही है, ऐसा ही मानो भैया। हाँ ये कोई भी धर्मी जीव कहो, सम्यक ज्ञानी जीव कहो, यही बात बताएंगे कि ये श्रीमंत ने बोला इसलिए ये जुदा है, कांजी स्वामी ने बोला इसलिए ये जुदा है, अन्य कोई बोलता है वो जुदा है। क्या कहते हैं कि अगर वह सम्यक दृष्टि होगा तो वह तो जिनेंद्र भगवान के मार्ग पर स्वयं चले हैं और वही बात बताएंगे, कोई उससे विरुद्ध बात नहीं होगी। ये तो हमने भागले पाठ डाले कि ये हाँ ये मुमुक्षु, ये फला फला, काय का मुमुक्षु, हाँ मुमुक्षु जाना चाहते, तो मोक्ष जाना चाहते और तू नरक जाना चाहता है, क्या है क्या ये? अभी श्रीमद की बात पकड़ के रखे तो श्रीमद को ही बस, बाकी किसी को सुनना नहीं, बाकी सुनना नहीं। अरे हम श्रीमद को भी समझते हैं सुनते हैं और कांजी स्वामी को भी सुनते हैं समझते हैं, अपने टोडरमल जी को सुनते समझते हैं, आचार्य कुंद को, अमृतचंद्र को सुनते हैं समझते हैं, ये तो भाई कोई ऐसी एक पर्टिकुलर बात नहीं है। अभी कैसा बताऊं, अभी मेरे को बहुत कुछ याद आ रही है फिर मैं चुप बैठ रहा हूं। चलो अभी अब हम कहां तक आए थे, न्यायक नी सन्मुख थई पुरुषार्थ कर, अभी आगे की बात क्या कह रहे हैं, न्यायक ज्ञान मा आवता तने पांचे समवयनु वास्तविक ज्ञान थशे, पांचे समवयनु वास्तविक ज्ञान थशे एटले प्रत्येक पर्याय पोता थी ज थाई छे परती थती नथी। ये पांच समवाय नहीं नहीं चार समवाय एक साथ आ जाए तो चार कभी आते ही नहीं, आवे तो पांच ही आवे, नहीं तो एक भी नहीं आवे, ऐसी बात है। हाँ स्वभाव तरूप नो पुरुषार्थ करता सम्यक्त्व थयूं त्यारे ख्याल है वो के काल लब्धि पाकी गई। क्या कहा, सम्यक्त्व थयूं तो कार्य हुआ तब ये अरे अरे ऐसा हो गया, काल लब्धि पाकी आती। द्रव्य संग्रह मां गाथा 21 नी टीका मां आवे छे के काल लब्धि हे ये छे, देखो समझना क्या कहना चाहते हैं। द्रव्य संग्रह लिखने वाले कौन है मालूम है, नलिन भाई, बहन आपको मालूम है, किसको मालूम है, मनु कोई नहीं जाने, आप नहीं जाने, अच्छा अच्छा अच्छा, ये द्रव्य संग्रह लिखने वाले नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती है, हाँ ऐसे वैसे नहीं है वो, तो वो ऐसा लिखते हैं।
गोमट सार के करता
ओ, अभी गोमट सार तो हमारी पहचान का हो गया, द्रव्य संग्रह को भूल गया हम। देखो वो क्या कहना चाहते हैं कि त्या आयु छे क्या, वो भी लिखा है 21 गाथा है उसकी टीका में, उन्होंने लिखा है कि काल लब्धि ही छे, ये ऐसा कैसा होगा। देखो दो आचार्यों में झगड़ा है, ऐसा नहीं है, वो क्या कहना चाहते हैं, काल अस्तिपने छे यानी काल होता है निमित्त छे पंते हेय छे केम केम के कारणी अने निमित्तनी सन्मुख दृष्टि करता सम्यक्त्वादि थतु नथी। यानी हम अरे हमारा जब काल आएगा, जब काम होगा, काल आता 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 है, देखो अभी मैं एक बात बताता हूँ, हमारे पहचान की बात यानी पहचान के लोगों की बात है, उन्होंने क्या कहते हैं पिक्चर चालू किया, क्या बोलते हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर, तो बीच में कुछ कारण से वो पिक्चर बंद हो गए। तो हर ज्योतिष के पास जावे कि भाई मेरा क्या होगा बता, एक देखा दो देखा दस देखे कब आएगा, बोले घबरा मत आएगा, तेरा अच्छा दिन आएगा, तो एकदम पॉपुलर होएगा, तो एकदम फेमस होएगा, तेरे को पैसे की ये मिलेगा, अरे पर कब, ठहर ठहर ठहर, तो वो राह देखे कि पैसा मेरे को कभी मेरी, अरे भाई तू पुरुषार्थ करेगा, पैसा कहीं से जमा करेगा, चालू पिक्चर चालू करेगा तो ठीक है, पर ये ऐसी बात है कि हमें सम्यक दर्शन कब होगा, काल लब्धि पाके त्यारे, तो काल लब्धि पाकने के लिए हम रुके, समझे, यहाँ तो तू स्वयं में एकाग्र होने की कोशिश कर कर उसमें सक्सेसफुल आ जाए, तो काल लब्धि आ ही गई है। देखो यहाँ क्या लिखा है, देखो देखो, हाँ देखो ये फर्स्ट लाइन फिर से पढ़ता हूँ, स्वभाव तरफनो पुरुषार्थ करता, क्या कहता है, पुरुषार्थ किया जब सम्यक्त्व थयू त्यारे ख्याल आए वो के काल लब्धि पाकी गई छे। अभी काल लब्धि के तरफ ही देखते बैठे, निमित्त की तरफ ही देखते बैठे, तो कब कार्य होना है ये बताते। तो अभी समझ में आया ना कि निमिजन सिद्धांत चक्रवर्ती कोई गलत बात नहीं बताते, उनके बात बताने का ढंग कहो या दृष्टिकोण कहो जुदा है। तो कहते हैं केम के कारणी, अभी नीचे थर्ड लाइन हो ब्रैकेट में लिखा है, केम के कारणी अने निमित्तनी सन्मुख दृष्टि करता सम्यक्त्वादी थता नथी, काल निमित्त छे ते छे अने पोतानी पर्यायनो जे स्वकाल छे ते पण छे। अब कहते पण हाँ हाँ दोनों दिया ना, हाँ पण ते स्वकाल नो ज्ञान कोने थाय, पोताना स्वभाव नी सन्मुख जा पुरुषार्थ करियो त्यारे काल पाक्यो, एम स्वकाल नु एटले काल लब्धि नु ज्ञान थयुं, भवितव्यतानु पण ध्यान थयुं, तथा स्वभाव सन्मुख पुरुषार्थ करियो ते स्वभावनु ज्ञान थयुं, अने निमित्तोनो एटलो अभाव छे एम ज्ञान थयुं। आम पांचे समवाय कारणों एक साथे छे एम यथार्थ ज्ञान थयुं। ब्रह्माबिन यहाँ सब नाम देखो, स्वभाव, काल लब्धि, भवितव्यता, पुरुषार्थ अने निमित्त, पांचों समवाय के नाम आ गए ना।
ये कब पता चलता है कहाँ, स्वभाव के सन्मुख देखने पर। और हम कहाँ जाते हैं, ज्योतिष के पास, ज्योतिषी के पास, ये हमारी काल लब्धि के होनहार क्या है होने वाली, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें, तो कहेंगे कोई ऐसा भी कुदेवादी की पूजा करो तो तुम्हारा कार्य हो जाएगा। तो जो होना ही है तो टलेगा नहीं, ख्याल है ना। और ये हम बाह्य संयोगों की तरफ ही देख देख कर वो तो उसके पास क्यों जाते हैं, आत्मा का अनुभव कराने के लिए।
मैंने जो अभी उदाहरण दिया, हमारे जो पहचान के थे, ये मंदा के भी पहचान के है कि नहीं पूछ लेना। ऐसे ही है, क्या करे, जब मति भ्रष्ट हो जाती है ना, तब ये ऐसा कोई निकलता है, मिलता है। अभी मेरे पास तो इतने स्टोरी है इसके बारे में, जाने दो। अब आगे बढ़ते हैं, तेथी आई कहूं छे के छ महीना चैतन्य स्वरूप निज शुद्ध आत्मद्रव्य ना अनुभव नो अभ्यास कर, ए नीज अंतर मा लगनी लगाड़। किसकी बात कर रहे हैं, केनी लगनी, देखिए शुद्ध चैतन्य स्वरूप निज शुद्ध आत्मद्रव्य, एनीज लगनी लगाड़, अने जो के एम करवाती हृदय सरसी पुद्गलात भिन्न धाम नह पुंसह ननु किम अनुपलब्धि भाति किम च उपलब्धि, पोताना हृदय सरोवर मा जेनु तेज प्रताप प्रकाश पुद्गल थी भिन्न छे एवं आत्मानी प्राप्ति नथी थती के थाई छे। याने अपन हाँ हाँ बता
उपाय बता दिया अपने प्रश्नों का। कल बात आई थी ना, हमने बहुत विस्तार से देखी थी। कि चैतन्य स्वरूप निज शुद्ध आत्मद्रव्य ना अनुभव नो अभ्यास कर, यही करने योग्य है। स्वाध्याय करते हैं फिर भी ये निज शुद्ध आत्मा में जो एकाग्र होने का जो अभ्यास है, कल आई थी ना बात, निश्चल होकर कहाँ गया, हाँ निश्चल होकर लीन हो जाए। कल कलश श्लोकार्थ में था क्या? हाँ पेज नंबर, ओहो ये अपनी पुरानी पुस्तक है ना, उसमें कुछ अलग पेज नंबर है। 18 में थे ना, 19 में था। हाँ
श्लोकार्थ में है,
श्लोकार्थ में है। हाँ एक चैतन्य मात्र वस्तु ने पोते निश्चल लीन थई देख, वो 6 महीना अभ्यास कर। ये तो मैक्सिमम लिमिट बताइए।
समय सार नाटक में लीधु छे कि ज्ञान रूपी सरोवर में तूज पोते चैतन्य कमल छे। ये बनारसी दास जी इतने कवि सुंदर थे, क्या कहते हैं, ये ज्ञान रूपी सरोवर है और उसमें तू ही स्वयं चैतन्य कमल है। स्वभाव सन्मुख पर्याय नो पुरुषार्थ ते भ्रमर छे। क्यों भ्रमर क्या करता है कि बार 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 वो फूल के तरफ जाता है, कमल के तरफ जाता है, वैसा ये पुरुषार्थ जो है कौन सा, स्वभाव सन्मुख पर्याय नो पुरुषार्थ, वो उसको भ्रमर बताया उधर। ते तूज छे, ये भ्रमर स्वयं तू छे, तूज चैतन्य कमल मां भ्रमर थई एकत्व पाम। ચૈતન્યના આનંદ રસનો ભોગતા થા, આ ચૈતન્ય કમળ જ્ઞાનાનંદના રસથી અત્યંત ભરેલું છે, તેમાં તું નિમગ્ન થઈ એકલા જ્ઞાનાનંદ રસને પી, આહાહા તું નિર્મળ પર્યાયરૂપ ભ્રમર થઈને ત્રિકાળી એકરૂપ ચૈતન્ય રસમાં નિમગ્ન થા, તેથી તને આનંદનો અદ્ભુત અનિર્વચનીય આસ્વાદ પ્રાપ્ત થશે, શુદ્ધ આત્માની પ્રાપ્તિ થશે, તું આનો અભ્યાસ કરે અને પ્રાપ્તિ ન થાય એમ કદી બને જ નહીં, ગેરંટી દે રે। ભગવાન આત્મા પુદગલથી ભિન્ન અર્થ કાય કાય તેજ
પ્રતાપ પ્રકાશ પુદગલથી ભિન્ન છે।
હા દેખો આપકા યે પૂછના હૈ કે પોતાના હૃદય સરોવરમાં જેનું તેજ
ત્યાં, જેનું એટલે આત્માનું, તેજ
દેખો પોતાના હૃદય સરોવરમાં, યાને સ્વયં કે હૃદય સરોવર મેં જિસકા તેજ, જિસકા પ્રતાપ, જિસકા પ્રકાશ, જો કૈસા હૈ પુદગલ સે ભિન્ન હૈ, ऐसे आत्मा का, आत्मा की प्राप्ति तुझे होगी। यानी आत्मा का तेज कहो, आत्मा का प्रताप कहो, आत्मा का प्रकाश कहो, उसकी तुझे प्राप्ति होगी। ये कोई, ये जो हमें प्रकाश दिखता है वैसा नहीं, एक आत्मा का जो कुछ उसका एग्जिस्टेंस है वो आपको पता लगेगा, इसका अनुभव होगा। यानी हम जब आत्मा के बारे में 6 महीने लगातार उसी के बारे में सोचेंगे कि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, चैतन्य मतलब ज्ञान दर्शन मैं ही हूँ, ऐसी बात बारंबार अपने मन में घूंटती रहेगी, तो 6 महीने के अंदर हमें सम्यक दर्शन होगा ही, ऐसे आचार्य यहाँ हमें गवाही देते हैं, गारंटी देते हैं। लिखा ना एम अने तू आनो अभ्यास करे अने प्राप्ति न थाय एम कदी बने ज नहीं। हम ऐसा लेते तू आनो अभ्यास कर अरे तने प्राप्ति थाय, ऐसा बोलते हैं, जो दोनों तरफ लगा ना। भगवान आत्मा समझ में आया बेन? हाँ, भगवान आत्मा उद्गलती भिन्न अर्थात रागादि विकल्प थी भिन्न चैतन्यना तेज थी भरेलो, चैतन्यना नूर नू पूर यानी ये प्रकाश, तेनी सन्मुख थई अंतर निमग्न थता अवश्य आत्मोपलब्धि थाय छे। पुरुषार्थ करे अने प्राप्ति न थाय एम केम बने? इसलिए कह रहे प्राप्ति थाय ज। जे कोई व्यवहारना विकल्पो छे तेनाती भगवान आत्मानु चैतन्य तेज भिन्न छे। ते चैतन्य तेजना अनुभव माटे विकल्पनो कोई सहारो नथी। प्रतिवदे है ना, हमारी बात नहीं ना? तेथी काल लब्धी पाके त्यारे प्राप्ति थशे, भगवाने दीठू हशे त्यारे प्राप्त थशे, इत्यादि अनेक प्रकारना विकल्पोनी नबळी वातो रेवा दे। एवी नबळी वातो थी आत्माना पुरुषार्थ छेद मा, यानी उसको तू ढाक के मत रखना, उसको तू ढीला मत होने देना, तारा प्रयोजन ने छेद मा। स्वभाव सन्मुक्ताना पुरुषार्थ वड़े जेनु प्रयोजन छे ते स्वात्मोपलब्धि सिद्ध कर। वड़ी कोई समय सार मा उद्गृत जय जिनमयम पवज्जय छंदनो आधार आपीने कहे छे के जो जिन मार्ग ने प्रवर्तवा इच्छता हो तो निश्चय ने व्यवहार एम बन्ने नयो ने न छोड़ो। परंतु भाई एनो अर्थ शुं? एनो अर्थ तो एम छे के व्यवहार छे खरो पन व्यवहार आश्रय करवा योग्य नथी। साधकपनानो भाव चौद गुणस्थान आदि सगड़ो व्यवहार छे खरो परंतु ते आश्रय करवा लायक नथी। ये जो हम गुणस्थान यानी गुणस्थान मार्गना स्थान आदि जो है वो है ही नहीं, ऐसा नहीं है। है तो सही पर उसके बारे में हम सोचते रहेंगे तो हमें आत्मानुभूति नहीं होगी, क्योंकि ये आत्मा में ये गुणस्थान भी नहीं है, मार्गना स्थान आदि कुछ नहीं है। लेकिन जब हम आत्मा को समझने को कोशिश करते हैं तो ये सारे उसमें गर्भित है, उसी के माध्यम से तो प्योर आत्मा की पहचान होगी, सच्चे मोक्ष मार्ग का पता लगेगा। तो क्या कहते हैं, देखो देखो यहां लिखा है कि कोई जीव आ छंदनो आधार अपी ने एम कहे छे के जो जिन मार्ग ने प्रवर्तवा इच्छता हो तो निश्चय ने व्यवहार एम बनने नयो ने न छोड़ो। अभी कई लोग तो इसका ऐसा उल्टा अर्थ लगाते हैं कि निश्चय नहीं यानी आत्मा आत्मा करो और व्यवहार नहीं यानी ये सारी क्रियाएं करो। ये लिखा ना बनने नए ने नहीं छोड़ो, तो फिर वहां अनेक लोग इस छंद का जुदा जुदा प्रकार से अर्थ करते हैं। परंतु भाई एनो अर्थ शू? अभी अर्थ देते हैं, देखो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, स्वामी जी क्या कहते हैं देखो कि व्यवहार छे करो पर आश्रय करवा योग्य नहीं, ये उसका अर्थ है। तो व्यवहार फिर क्यों छोड़ना नहीं, कि व्यवहार के व्यवहार नयों के माध्यम से आत्मा का स्वरूप जानो, फिर जब जानोगे तब उन भेदात्मक जो कोई कथन है उस कथन को छोड़ो, यानी क्या अभेद आत्मा को ग्रहण करो तो छूट ही गया ना, क्योंकि निश्चय ने हमेशा व्यवहार ने झूठा है, नेति न इति ऐसा बताता है। इसलिए कह रहे हैं कि दोनों को समझो लेकिन आश्रय करने योग्य तो निश्चय नहीं है। आगे समय सार गाथा 11 कहूं छे के भूतार्थनो अर्थात एक निश्चय ने निश्चय नो आश्रय करो, केम के त्रिकाली भगवान जे छतो एटले विद्यमान पदार्थ अस्थिरूप महाप्रभु छे एना आश्रयज सम्यक दर्शन प्राप्त थाय छे। सम्यक दर्शन थया पछी बाकी रहेली अशुद्धता अने पर्यायनी अपूर्णता तेते काळे જાનેલી પ્રયોજનવાન છે એમ બારમા ગાથા બારમા લીધું છે. એ ક્યાં કહેતે હૈ, યે બાકી જો કોઈ બાત હૈ વો જાનેલી પ્રયોજન અને જાનેલો પ્રયોજન જાનને પૂરતા વો હૈ એસા વહાં પર બતાયા હૈ. વ્યવહાર જાનેલો પ્રયોજનવાન છે, આદરેલો પ્રયોજનવાન નથી. યાને વ્યવહાર કા કથન જો હૈ વો જાનને કે લિયે, યાને વો ઉસકા પ્રયોજન ક્યા હૈ કે ઉસકે બારે મેં તુમ જાનો. ઓર નિશ્ચય ને કૈસા હૈ કે આદર કરો, યાને ઉસકે આશ્રય કરો, ગ્રહણ કરો, જો ભી હૈ તો વો આદરેલો, ઉસકા આદર કરો, યાને ઉસકે બાત જો નિશ્ચય ને કહી રહી વો બાત સાચી હૈ એસા સમજકર ઉસે એકાગ્ર હો જાઓ. વ્યવહાર નયો પરિજ્ઞાય પરિજ્ઞાય માનહ તદાત્વે પ્રયોજનવાન, એટલે કે વ્યવહારને તે કાળે જાણેલો પ્રયોજનવાન છે. તે કાળે જે પ્રકારની અશુદ્ધતા છે અને શુદ્ધતાનો જે અંશ વધ્યો છે તે સગળો વ્યવહાર જાણેલો પ્રયોજનવાન છે એવો અર્થ શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવે બારમી ગાથાની ટીકામાં કર્યો છે. સિદ્ધ સાધક અને સંસાર એ બધું વ્યવહાર છે. ક્યા કહા, દેખો સિદ્ધોં કો ભી વ્યવહાર મેં ડાલ દિયા. ક્યું, ભેદ કરકે બતાયા ના ઉનકો, યે સાધક હૈ, યે સિદ્ધ હૈ, વગેરા વગેરા. યે સંસાર હૈ, ત્રિકાળી ધ્રુવતે નિશ્ચય અને પર્યાય તે વ્યવહાર, એ સિદ્ધ કો પર્યાય મેં ડાલા, ઇસલે પર્યાય તે વ્યવહાર છે. વ્યવહાર છે ખરો પણ જાનેલો પ્રયોજનવાન છે, નિશ્ચય છે તે આદરેલો પ્રયોજનવાન છે. બાપુ વસ્તુનું સ્વરૂપ જ આવું છે, ભગવાને એમ જ કહ્યું છે, શાસ્ત્રમાં એમ જ છે અને વસ્તુની સ્થિતિ પણ એમ જ છે. અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવે દેવ કહે છે કે આ શાસ્ત્રની ટીકા કરવાનો જે વિકલ્પ છે તે અમારો સ્વરૂપભૂત નથી, એટલે મારું એ સ્વરૂપ નથી, અમે તો તેના માત્ર જાણનાર છીએ. યાને ઉન વિકલ્પો કો જાનને વાલે હમ હૈ, સ્વરૂપ ગુપ્ત છીએ, યાને અપને સ્વરૂપ મેં એકાગ્ર હોને વાલે, ગુપ્ત હોને વાલે હમ હૈ. ટીકા તો શબ્દો વડે પુદગલોથી રચાય છે, એ શબ્દો અને વિકલ્પથી ભિન્ન આત્મામાં અમે તો ગુપ્ત છીએ. શબ્દો અને વિકલ્પો અમારો નિવાસ નથી, નિવાસ નથી ચાહીએ. આપ મેં ક્યાં લખા, ગલત હૈ વો, નિશ્વાસ કા અર્થ ક્યાં હોતા હૈ, હા વ કા ની વી, નિવાસ ચાહીએ. યાને હમ શબ્દ મેં ઓર વિકલ્પ મેં રહેને વાલે નહીં હૈ, હમ અપને સ્વરૂપ મેં રહેને વાલે હૈ, એસા અર્થ હૈ ઉસકા.
પહેલે વાક્ય મેં આ ગયા ના, હમ તો આત્મા મેં ગુપ્ત હૈ, શબ્દો મેં હમારા નિવાસ નહીં હૈ, શબ્દો મેં ઓર વિકલ્પ મેં.
હા દેખો દેખો આગે અહીં કહે છે કે વસ્તુ સ્વભાવ જે પૂર્ણ છે તેની સન્મુખતા કરી તેમાં ઢળતા એકાગ્ર થતા તેની પ્રાપ્તિ ન થાય એમ કેમ બને. સ્વભાવ સન્મુખતાના અભ્યાસ વડે સ્વાત્મોપલબ્ધિ અવશ્ય થાય જ. કળશ 34 ભાવાર્થ ઉપરનું પ્રવચન. ચૈતન્ય સ્વરૂપ ભગવાન આત્માનો અભ્યાસ કરે તો તેની પ્રાપ્તિ અવશ્ય થાય. અંતર્મુખ વળવાનો પુરુષાર્થ કને અને પ્રાપ્તિ ન થાય એમ ત્રણ કાળમાં બને નહીં. અહીં અભ્યાસનો અર્થ માત્ર વાંચવું અને સાંભળવું એમ નથી, પણ અભ્યાસ એટલે નિજ શુદ્ધ ચૈતન્યમાં એકાગ્રતા કરવાના પુરુષાર્થની વાત છે. અભ્યાસ કહા
દેખો યહાં ભી વિકલ્પ ઉઠાવવાની વાત નથી કરી. એને હમકો વિકલ્પ ઉઠાને કી ઇતની આદત હો ગઈ હૈ કે કુછ ન કુછ આત્મા કા ધ્યાન કરના હૈ. ચલો મેં શુદ્ધ હું બુદ્ધ હું એસા શુરૂ હોતા હૈ ના મન મેં ઉસકી બાત નહીં હૈ. બસ અંતર એકાગ્રતા કરની હૈ. જ્ઞાન સ્વરૂપ તો હમ હૈ હી, ઉસ રૂપ રહેના હૈ, બસ ઉસકા સ્વીકાર કરના હૈ. તો હમે એસા લગતા નહીં વિકલ્પ કરેંગે તો કૈસા આત્મા અનુભવ હોગા. અભિપ્રાય મેં કહી તો પડા હૈ ના, વિકલ્પ કો હમને કરને લાયક માના હૈ. વિકલ્પ હોગે ઉસકી કોઈ ચિંતા નહીં હૈ, પણ અભિપ્રાય મેં હમને ક્યાં ઉસકો માના હૈ. વિકલ્પ સે અપની આત્માનુભૂતિ હોગી કે નહીં હોગી. વિકલ્પ કી ભૂમિકા તો કહાં તક હૈ કે સમજને તક. અભી વિકલ્પ કી ક્યા જરૂરત હૈ? ભૂખ લગી હૈ તો વિકલ્પ કરતે બેઠતે હો? હા, ભોજન ખાને સે તૃપ્ત હોંગે, ભોજન ખાને સે તૃપ્ત હોંગે, વહાં ફટ કરકે વો ખા લેતે હૈ.
કોઈ બાત નહીં, સ્લોલી એન્ડ સ્ટેડીલી હો જાયેગા. દેખો દેખો ભાઈ, તારી શ્રદ્ધામાં તો લે કે વસ્તુ આવી છે. દેખો મેને જો પોઈન્ટ બતાયા ને વો હૈ ને યહાં. પહેલે તો લિખા નિજ શુદ્ધ ચૈતન્યમાં એકાગ્ર કરવાના પુરુષાર્થની વાત છે. તો કહેતે ભાઈ, અને પહેલે જ તારી શ્રદ્ધામાં તો લે કે વસ્તુ આવી જ છે. કેવી? ચૈતન્ય માત્ર છે. શ્રદ્ધામાં બીજું કાંઈ લઈશ તો આત્મા હાથ નહીં આવે, પુરુષાર્થ અંતરમાં નહીં વળે. અહો, ગજબનો કળશ મૂક્યો છે. દેખો યહાં તો ક્લિયર કટ બતાયા જે ભાઈ આપને જો સવાલ પૂછા હતા ને અરવિંદભાઈ, કે ભાઈ જ્ઞાન મેં નિર્ણય કરના યાને ક્યા, તો યહાં તો હમ નિર્ણય કરને કી બાત યાને કુછ અન્ય સોચતે પણ યે શ્રદ્ધા કી હી બાત હૈ. ક્યોંકિ દેખો દેખો અભી હમારી તુમ્હારી બાત તો છોડો, હમ તો કોણ હૈ? 11 અંગ ઓર 9 પૂર્વ કે પાઠી હોતે હૈ, ઉનકો જ્ઞાન મેં નહીં આયા હોગા શરીર ભિન્ને ઓર આત્મા ભિન્ને, રાગ ભિન્ને ઓર મેં ભિન્ન હું, એસા ઉનકે ભી નહીં આયા હોગા. પણ વો સારી જ્ઞાન કી બાત હૈ, શ્રદ્ધા મેં રખી નહીં ઉન્હોને, તો વો નિર્ણય હૈ. અભી ઉસકે અગેન્સ્ટ હમ ઇસકા હી દેખતે હૈ ના, વો કોઈ મુનિ થે વો પૃષ્ઠમાસ ભિન્નમ વાલે શિવભૂતિ મુનિ, ઉનકો કોઈ જ્ઞાન મેં બાત નહીં રહેતી થી. સિર્ફ ઇતની બાત રહી કે મેં જુદા હું ઓર યે શરીર જુદા હૈ, તુષ્ય માસ ભિન્નમ. જીસ તરહ છિલકા અલગ હૈ ઓર દાલ અલગ હૈ, એસા જો ભી હો અન્ન ધાન અલગ હૈ, યે ઉનકે દિમાગ મેં આઈ વહી બાત ઉન્હોને ઉસ પર ઘટાઈ. ઉનકે બુદ્ધિ કે એસે થોડા સા સમજો કમજોરી આઈ થી કે કુછ યાદ નહીં રહેતા થા, તો ઉસી ભાવ મેં મોક્ષ ચલે ગયે. બોલો, યે મૂળ બાત તો એસી હૈ કે શ્રદ્ધા મેં જબ તક નહીં જાતી હૈ બાત, તબ તક હમે થોડા સા શ્રદ્ધા મેં જો પલટા હો રહા હૈ ના, વો એસા દિખા નહીં પાતે કે હમ ઇતની હમારી શ્રદ્ધા હો ગઈ હા, નહીં નહીં ઇતની હોઈ હૈ, કુછ નહીં. જ્ઞાન તો આપ જીતના બાત કરો જરા કુછ એસા બડપન કરો તો જ્ઞાન ખ્યાલ મેં આતા હૈ, ઓર જીતના હૈ ઉસસે અધિક જ્ઞાન એક્ઝિબિટ કરને કા શોક ભી રહેતા હૈ. મુજે આપને પ્રશ્ન પૂછા ના, તો મેં ભી મેને ઉત્તર તો દિયા, જબ તો મેને અભી તો પઢા નહીં થા. લેકિન એ બિલકુલ દેખો, નિજ શુદ્ધ ચૈતન્યમાં એકાગ્રતા કરવાના પુરુષાર્થની વાત છે. ભાઈ તારી શ્રદ્ધામાં તો લે, દેખો કે વસ્તુ આવી જ છે. શ્રદ્ધામાં બીજું લઈશ તો આત્મહાત નહીં આવે, શ્રદ્ધામાં લઈશ તો આત્મહાત આવે. યાને અભી હમ અપની પોઝિશન મેં જબ સોચતે હૈ તબ અભી હમારે જ્ઞાન મેં તો બાત બિલકુલ સરળતા સે ઓર સહી રૂપ સે આઈ હૈ. અભી બસ ખાલી બાકી ઇતના હૈ કે પુરુષાર્થ શ્રદ્ધા કે સાથ હોના ચાહીએ. ઓર શ્રદ્ધા નહીં, બાત માનના કહો યા એક્સેપ્ટ કરના, ઓર યહી બાત સહી હૈ, યહી નિર્ણય હુઆ, યહી પુરુષાર્થ હુઆ, યહી સારા કુછ જીસ એંગલ સે આપ દેખો વહી હૈ. ક્યુંકિ અનંત ગુણ એક હી જગહ મેં હૈ ના, तो उसका एक का रूप दूसरे में तो है ही है, तो आप समझाने के लिए तो कहोगे कि भाई तुम श्रद्धा में लो, वही पुरुषार्थ है, तो श्रद्धा में लेना तो श्रद्धा गुण का काम है, पुरुषार्थ कहाँ आया? लेकिन पुरुषार्थ को देखने जाके तो कि पर्याय में स्वरूप की रचना करना, रचना करना यानी क्या, जैसा है वैसा रखना, मानना, रखना का है उसको क्या रखने, मानना ही आएगा उधर। अब वो किस तरह से समझाना, मैं शब्द के इसका ये नहीं, मास्टर नहीं हूं, लेकिन ऐसी ही बात है। अभी उसमें बाल के क्या, खाल के बाल निकालते, ऐसा थोड़ी एक एक अलग करना है, ये तो भाई अपने को तो उसके अंदर जो बात बताई जा रही है उसको समझने की कोशिश करनी है। भाव भाषण थवो जोइए। चलो, गजब नो कलश मुक्यो छे, तीक्ष्ण करवत के छीनी पड़े अने बेकटका न थाय एम बनेज नहीं, तेम जेने रागनी रुचि छोड़ी अने स्वभावनी रुचि करी तेने स्वभाव प्राप्त न थाय एम बनेज नहीं।
ये रुचि कौन से गुण की पर्याय है? रुचि श्रद्धा गुण की पर्याय।
कितनी बात सरल है लेकिन गड़बड़ हो जाती है। बेन बेन। क्या कह रहे, देखो हाँ? फिर से के तेम जेने रागनी रुचि छोड़ी। अभी हम अपनी तरफ से देखते हैं, अभी हम जितने यहाँ लोग आए हैं, जब हम स्वाध्याय नहीं कर रहे थे तो हमारी रुचि कहाँ थी? मतलब ये देखो वो देखो या इससे बात करो उससे बात करो। अब हमको टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारी जो डेली रूटीन रेगुलर लाइफ है वो तो चलाना ही है और उसके लिए हमें टाइम भी देना है और अपने यहाँ स्वाध्याय के लिए, अपने स्वरूप को समझने के लिए भी टाइम देना है। तो अभी हम टीवी देखना बंद कर दिए, इसमें अधिक टाइम दे रहे हैं। गॉसिप करना बंद कर दिए, इसमें टाइम दे रहे हैं। तो ये रुचि बढ़ती जा रही है, ख्याल में है? तो क्या समझा रहे हैं कि देखो, जेने रागनी रुचि, ये पंचेंद्रिय के विषयों की जो राग है एनी रुचि छोड़ी अने स्वभावनी रुचि करे तेने स्वभाव प्राप्त न था एम बनेज नहीं, ख्याल में है? जो प्राप्ति न थाय तो एनो अर्थ एटलो छे के स्वभाव तरफ ना पुरुषार्थनी खामी छे। हा, पर वस्तु होय तेनी प्राप्ति न थाय, अर्थात जे स्वरूप मा नथी तेनी केमे करीने प्राप्ति न थाय, केमे करीने ने कुछ भी करके प्राप्ति होती ही नहीं है, गम्मे तेटलो पुरुषार्थ करे तो पन राग पोतानो न थई जाए, परंतु जे स्वस्वरूप छे तेनु वलन करी तेना अनुभव नो अभ्यास करे तो तेनी प्राप्ति जरूर थाय। आत्मा मा वीर नामनो गुण छे तेनु कार्य, जो साहेब आत्मा मा वीर नामनो गुण छे तेनु कार्य स्वरूपनी रचना करवानु छे। अभी रचना क्या करसे, स्वभाव में जाइने करसे के पर्याय में करसे, ख्याल में आयो ने? स्वभाव तो छे जेवो, जेवो छे तेवो पर्याय में एने रचवानु एटले एवुं मानवानु। तेथी अंतर्मुख आत्मा में पुरुषार्थ करता स्वरूपनी रचना निर्मल थाय थाय अने थायश। यहीं रुकते अभी, जावनी के ज्ञान ते सूजे लो कालो सोवाणी मस्तकण मो सदा देत हो।